ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यिदना व नबीना व हबीबना व शफीना محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم। ये दोनों आयतें अहले इल्म के फराइज के सिलसिले में बड़ी सख्त हैं। बुखारी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत किताबुल इल्म में मौजूद है। फरमाते हैं कि लोग यूँ कहते हैं अक्सर अबू हुरैरा था कि अबू हुरैरा बकसरत रिवायतें बयान करते हैं। का मेरे महाजरीन भाई वो तो तिजारत पेशा थे, वो अपने ख़रीदो फरोख्त में मशगूल रहते थे, और मेरे अंसारी भाई जो हैं वो ज़रात पेशा थे, वो अपनी खेती बाड़ी में मशगूल रहते थे। अबू हुरैरा अपना पेट भर कर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लगा लिपटा रहता था, जी भर कर, यानी गोया मेरा मशगला ही ये था। बहुत सी वो बातें जो मैं सुनता था वो नहीं सुनते थे, बहुत से वो मकामात जहाँ मैं होता था वो नहीं होते थे। और अगर कुरान पाक की ये दुआयतें न होती, इन्हीं दुआयतों की तरफ उन्होंने इशारा किया, पढ़ के सुनाया, इन्नल्लज़ीन यक्तुमून मा अनज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यनाहु लिन्नास फिल किताब, कि हमने कुरान पाक में जो अहकाम और हिदायत की बातें वाज़ह तौर पर बतला दी, जो लोग उसको जानने के बाद भी छुपाते हैं, लोगों के सामने उसको वाज़ह और बयान नहीं करते, उलाएक यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल्लाइनून, उनके ऊपर अल्लाह ताला लानत करते हैं और लानत वाले लानत करते हैं। अलबत्ता इल्लल्लज़ीन ताबू, जो लोग अपनी इस हरकत से बाज आ जाएँ, वासलहू व बयनू, और अपना हाल ठीक कर लें और दोबारा लोगों के सामने इन अहकाम को बयान करने का सिलसिला जारी कर दें, औलाइका तूबो अलैहिम, बारी ताला फरमाते हैं कि मैं उनके गुनाहों को माफ़ करूँगा। तो हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला ने इन आयात को पेश किया। शुर्राह ने लिखा है कि गोया इन आयतों के अंदर तो मिन बादे मा बय्यन्ना हो फिल किताब, लेकिन सिर्फ कुरान से के साथ ये मखसूस नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात भी इसमें आ जाते हैं, और वैसे आने भी चाहिए, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की के इरशादात की कोई मुस्तकिल हैसियत नहीं है, बल्कि वो तो कुरान पाक में जो कुछ अल्लाह ताला ने नाजिल किया है उसी की तौज़ी और तशरीह है, या वो उसके ताबे है। तो जो हुक्म कुरान पाक का है वही नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात का है। वअन्ज़लना इलैकल कुरान लितुबय्यिन लिन्नास मा नुज़्ज़िल इलैहिम, या हुज़ूर जो कुछ भी फरमाते हैं उसकी हैसियत कुरान की शरह की है, तो जो हुक्म कुरान का है वो इसी का है। तो बहरहाल इससे मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक तआला ने जिसको थोड़ा सा भी इल्म दिया हो उस इल्म का हक यह है कि उस इल्म को अल्लाह के उन बंदों तक जो उससे महरूम हैं पहुंचाने का एहतमाम करे। اسی بخاری شریف میں کتاب الوضو میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان کے جو ہے آزاد کردہ غلام ابان سے انہوں نے پانی منگوایا اور وضو کر کے بتلایا. امام بخاری نے وضو میں ہر عضو کو تین تین مرتبہ دھونا چاہیے یہ باب قائم کیا ہے عنوان, اور اس میں یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی ہے. ویسے تو کتاب الوضو میں کئی جگہوں پر اس روایت کو انہوں نے ذکر کیا ہے. تو اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا طریقہ جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا تھا کر کے بتلایا, اور پھر جو ہے حضور کا یہ ارشاد نقل کیا کہ اس طرح وضو کر کے جو آدمی دو رکعتیں اس طرح پڑھے کہ لا یحدث فیہما نفسہ, کہ اس میں اپنے جی سے باتیں نہ کرے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس روایت کو نقل کرنے کے بعد راوی حدیث حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی دو آیتوں کا حوالہ دیا کہ اگر یہ دو آیتیں نہ ہوتی تو میں یہ حدیث بیان نہ کرتا. میرے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہ مزاج تھا کہ جو کچھ بھی انہوں نے علم حاصل کیا پہلا درجہ تو یہ ہے کہ وہ خود اس پر عمل کا اہتمام کرتے تھے. یہ بھی ایک سوچنے اور سمجھنے کی چیز ہے. حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہم اپنے طلباء سے پوچھتے ہیں بھائی تم کیوں پڑھتے ہو, وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اس کے بندوں تک پہنچائیں. تو کہا بہت اچھی بات ہے یہ, لیکن اپنے آپ کو بھول گئے. پہلا مرحلہ جو علم کا ہے وہ تو یہ ہے کہ آدمی اس لیے پڑھے کہ خود عمل کرے, اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے کہ اللہ کے دوسرے بندوں تک اس کو پہنچائے. حضرت مالک ابن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں موجود ہے. یہ چند نوجوان تھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, کچھ روز قیام کیا, اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ان کو شاید گھر والوں کی یاد آ رہی ہے. تو حضور نے خود پوچھا تم گھر کس پر کس کو چھوڑ کر کے آئے, انہوں نے بتلایا, کہا اچھا ٹھیک ہے تم ہمارے پاس رہے, جو کچھ سیکھا تم اب گھر جاؤ اور گھر والوں کو یہ باتیں سکھلاؤ. تو علم کے اندر پہلا درجہ تو عمل کا خود کا ہے کہ آدمی اس پر عمل کا اہتمام کرے. ہمارے اسلام کے اندر گویا یہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے آج کل نئی اصطلاح ہے, علم برائے علم, یعنی علم کو خالص علم کے لیے سیکھو. اسلام علم برائے علم کا قائل نہیں ہے, اسلام کہتا ہے علم برائے عمل, عمل کے لیے علم کو حاصل کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے بھی بہت ساری تربیت امت کی فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں. اور دوسری دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, کہ اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع پہنچانے والا نہ ہو. تو نفع پہنچانے والا علم کون سا؟ نفع پہنچانے والا علم وہی ہے آدمی جس پر عمل کا اہتمام کرے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم ما ينفع العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. آپ عبارتیں کتابوں کی یاد کر لیں, الفاظ یاد کر لیں, اس کا نام علم نہیں ہے. علم تو وہ ہے جو آدمی کو فائدہ پہنچائے, یعنی اس پر عمل کا اہتمام ہو. حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیس العالم الذی یعرف الخیر والشر انما العالم الذی یعرف الخیر فیتبعه ویعرف الشر فیجتنبه. کہ آدمی عالم وہ نہیں ہے جو خیر اور شر دونوں کو جانتا ہو, جاننے کا نام علم نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں عالم تو وہ ہے جو خیر کو جانتا ہو اور اس کو عملی جامہ پہناتا ہو, اس پر عمل کا اہتمام کرتا ہو, اور شر کو جانتا ہو اور اس سے بچنے کا اہتمام کرتا ہو. گویا عمل بنیاد. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے, उनके पास रहे, इल्म हासिल किया, और इल्म हासिल करके तकमील करके जब जाने लगे तो उन्होंने इमाम साहब से दरख्वास्त की, इमाम गजाली से कोई नसीहत फरमाएं। इमाम गजाली का एक रिसाला है उनके रसाइल में, अय्युहल वलद, उसमें उस रिसाले को उन्होंने इसी शागिर्द को खिताब करते हुए लिखा है। उस रिसाले में उन्होंने एक बड़ी अजीब व गरीब बात लिखी कि इल्म नाफे कौन सा और गैर नाफे कौन सा। वो फरमाते हैं, जो इल्म तुमको दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी से नहीं रोकता, वो इल्म कयामत में तुमको अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता। जो इस इल्म को पढ़ कर के हम अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को बचाने का एहतमाम करते हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि यही इल्म कल को कयामत में अल्लाह के अजाब से भी हमारी हिफाजत का जरिया बनेगा। लेकिन हमने पढ़ा और पढ़ने के बावजूद जानते हैं कि भाई ये हमें करना है, इसके बावजूद हम अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं। तो अब इस इल्म के बाद ये उम्मीद रखना कि ये इल्म अकल को हमें अल्लाह के अजाब से बचाएगा, ये ख्यालस्त महारस्त जुनून। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इल्म चंदा के बेशतर खानी, तू अमल दर तू नेस्त नादानी। कि जब कितना इल्म पढ़ लो, अगर तुम्हारे अंदर अमल नहीं है तो तुम जो है जाहिल के हुक्म में हो। न मुहक्किक बुअद न दानिशमंद, चार पाया बरो किताबें चंद। कि किसी जानवर के ऊपर चंद किताबें लाद दो तो इन किताबों को लाद देने की वजह से वो कोई मुहक्किक और दानिशमंद और आलिम बन जाता नहीं है। अगर खाली जानने ही का नाम इल्म होता तो आजकल तो ये जितनी सीढ़ियाँ हैं ना, सीढ़ियाँ, ये बहुत बड़े आलिम हैं, पूरे 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 कुतुबखाने अपने अंदर लिए हुए हैं। तो हकीकत में खाली इन चीज़ों का हमारे दिलो दिमाग में आ जाना काफ़ी नहीं, बल्कि उसके ऊपर अमल का अहतमाम होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसी की तरह मुतवज्जह फरमाते थे। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत जो तिर्मिज़ी शरीफ में है, एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं याखुदु अन्नी हाउलाइल कलिमात फयामलु बिहिन्ना और युअल्लिमु मन यअमलु बिहिन्ना। कौन है जो मुझसे इन बातों को सीखे और उसके ऊपर अमल का अहतमाम करे, या किसी ऐसे आदमी को सिखलाए जो उस पर अमल करा अहतमाम करने वाला हो। मालूम हुआ पहला दर्जा यही। अब्दुल कैस कबीले का वफ्द जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, बुखारी शरीफ में वाकया मौजूद है, उन्होंने कहा, अर्ज दरख्वास्त की कि अल्लाह के रसूल हमको कुछ ऐसी बातें बतलाइए कि जिस पर अमल करके हम जन्नत में दाखिल हो जाएं, वह नुखबिर बहीम वराना, और फिर उन लोगों को जो हमने पीछे छोड़ करके आए हैं अपने कबीले में, उनको भी उससे आगाह करें बतलाएं। तो गोया इल्म के दो ही मकसद हैं, पहला दर्जा यह है कि आदमी खुद अमल का अहतमाम करे, और दूसरा दर्जा यह है कि लोगों तक पहुँचाने का अहतमाम करे। तो हमें इन हमारी तरफ से इन दोनों चीज़ों में कोताहियाँ हो रही हैं। खुद अमल के मामले में बहुत सारी कोताहियों का हम शिकार हैं, और दूसरों तक पहुँचाने के मामले में भी हमसे बहुत सारी कोताहियाँ हो रही हैं। हजरत अबू ज़र ग़फ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु का मकूला बुखारी शरीफ में किताब उल-इल्म में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है कि अबू ज़र ग़फ़ारी फरमाते हैं कि अगर मेरी गर्दन के ऊपर तेज तलवार रख दी जाए और मुझे इस बात का यकीन हो कि वो तलवार चलाकर मेरा गला काट दिया जाए, उससे पहले मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात को पहुँचा सकूँगा तो पहुँचाऊँगा। गोया हुजूर के इरशादात को दूसरों तक पहुँचाने के मामले में मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत तो आपके सामने है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब उनके हुजूर के पीछे वो थे गधे के ऊपर सवार, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मुआज़, और फिर उनको बतलाया कि जो आदमी ये कलमा पढ़े जहन्नम की आग उसके ऊपर हराम है। तो हज़रत मुआज़ ने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या मैं लोगों को बतला दूँ? कहा कि नहीं। फिर हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात का वक्त जब करीब आया तो उन्होंने सब लोगों को अपने पास गमले में जमा किया, और जमा करके फरमाते हैं कि देखो, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जितनी भी बातें सुनी हैं वो सब मैं तुम तक पहुँचा चुका हूँ, सिवाय एक बात के, मैं तो ये बतलाना चाहता हूँ कि देखो जितना उन्होंने हुजूर से सुना था सब दूसरों तक पहुँचा दिया। आज हमारे तबके उलमा में कोई ऐसा आदमी जो अपने आप को बहुत छोटा आलिम कहता हो कि भाई मैं तो बहुत छोटा हूँ, मुझे बहुत कम इल्म है, वो भी क्या ये दावा कर सकता है कि इसम की इल्म की ये कलील मकदार जो उसने हासिल की है वो दूसरों तक पहुँचा चुका है? नहीं। तो हजरत साहबा का मिजाज ये था, वो अपने मशागिल के साथ जो है वो इल्म की इशात को उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक मिशन बनाया था। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु बुखारी शरीफ में मौजूद है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा अपने शागिर्द जो उनके आज़ाद करदा गुलाम इकरामा उनको और अपने बेटे अली को यूँ कहा, जाओ अबू सईद खुदरी से इल्म हासिल करो। चुनांचे ये दोनों उनके पास गए तो वो अपने बाग में अपने दरख्तों को पानी पिला रहे थे। ये दोनों उनके पास पहुँचे, सलाम किया, पूछा कैसे आए कि आपसे इल्म हासिल करें। वो पानी पिलाना बंद और एक दरख्त के नीचे घोट मार करके बैठ गए और हदीसें सुनाना शुरू किया। उसी में मस्जिद नबवी की तामीर का किस्सा उन्होंने सुनाया। इमाम बुखारी ने वही रिवायत किताबुल मसाजिद के अंदर जो है वहाँ अबू सईद खुदरी की इसी तफसील के साथ बयान की है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु बसरा के अंदर गवर्नर से हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में उनकी तरफ से उनका रोज़ाना का मामूल था। यह अबू जमरा की रिवायत वफद अब्दुल कैस के सिलसिले में जो बुखारी में कई जगह आती है उसमें यही है कि वो इलाका जो था वो इराक का इलाका था और वहाँ वालों की असली जबान जो थी वो फारसी जबान थी। हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु खुद फारसी नहीं जानते थे तो उन्होंने हजरत अबू जमरा जो है उनके शागिर्द उनको वास्ता बनाया था, तर्जमान बनाया था। तो हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु रोज़ाना अपने दरस का हलका लगाते थे, लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस सुनाते थे और ये काम तर्जमा करने का जो है ये अबू जमरा करते थे। तो मैं ये बतलाना चाहता कि अपने गया इलाके के गवर्नर हैं, गवर्नरी वाली जिम्मेदारी उनको इल्म की इशात से रोक नहीं सकी। बल्कि हजरत उस्मान का किस्सा भी बतलाया अपने वक्त वो उनके खिलाफत के ज़माने का किस्सा, खलीफा ये वक्त हैं लेकिन इसके बावजूद वज़ू का जो तरीक़ा उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से सीखा था, देखा था, वो लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। हजरत अली रदी अल्लाह तआला उन्होंने एक मरतबा अपने दौरे खिलाफत के अंदर जो है कूफा के चौक के अंदर पानी मंगवाया और वज़ू करके बतलाया और फिर बकिया उन्होंने पिया और कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह करते हुए देखा। शमाइल में ये रिवायत मौजूद है। तो बतलाना ये चाहता हूँ कि ये हजरात अपने अपने मशागिल में, हमारा हाल तो ये कि अगर हम को कुछ तिजारत हमारी चल पड़ी हो और कुछ हमारे पास कुछ तिजारत हो, फैक्ट्री हो, कोई और कोई मशगला हो, तो हम चाहे कितना इल्म हो हम लोगों को उसका इल्म को पहुँचाने का अहतमाम नहीं करेंगे। लेकिन इस वक्त तो अल्लाह ताला ने हमको ख़ास इसी के लिए मशगूल किया है, इसी काम के लिए फारिग किया है। तो हमें चाहिए कि इसके अंदर हम खूब खूब लगें। और हमारी जिम्मेदारी क्या है, जैसे हम अपने आप को वारिसुल अंबिया कहते हैं कि इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युवरिसु दीनारन वला दिरहमन इन्नमा वरसुल इल्म फमन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफ़िरिन। ये हज़रात अंबिया उलमा जो हैं अंबिया के वारिस हैं और अंबिया ने अपने पीछे दनानी और दराहिम नहीं छोड़े बल्कि इल्म को छोड़ा है। जो आदमी इल्म हासिल करे वह उसने बहुत बड़ी दौलत हासिल कर ली। तो अब ये अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी दौलत जो अता फरमाई है, हमें इसको लोगों तक पहुंचाने का अहतमाम करना है। हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उमूमन बर्रे हो अन्नी वला आया या जो है फलयुबल्लिगिश शाहिदुल गायब, आप इरशाद फरमाते। इमाम बुखारी ने कई जगह इसकी तरफ इशारा किया अबवाब के अंदर उनवान कायम करके कि एक आयत यानी एक मसला भी अगर तुम मुझसे सीखे हुए हो तो लोगों तक पहुँचाओ और तुम में जो हमारी मजलिस के अंदर मौजूद होते हैं वो दूसरों को जो मौजूद नहीं है उन तक पहुँचाने का अहतमाम करें। अभी जैसा कि बताया कि भाई हमारी हैसियत दोनों तरह की है, हम मदरसे में बैठे हैं तो हमारे जो शागिर्द हैं उनके हक़ में तो हम कुआँ बन जाएँ कि वो तालिब बन करके आए हैं, जो कुछ भी हासिल करना चाहें उनको बताएंगे और जो लोग तालिब नहीं हैं हमारे पास नहीं आए हैं उनको उनके पास जा कर के उनको ये शरीयत के अहकाम पहुंचाने का एहतमाम करें। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जब हमको नबी अम्बिया का वारिस करार दिया गया तो अम्बिया का काम क्या होता था? कुरान पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो सैयदुल अम्बिया हैं उनकी जिम्मेदारियों को मुख्तलिफ जगहों पर बयान किया गया है। एक मौका पहला तो वो है जो हज़रत इब्राहिम अला नबियाना अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की तामीर के मौके पर दुआ की थी, रब्बना वबसफ़ीम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वलहिकमत वयुज़क्कीहिम, कि अल्लाह तू इनके दरमियान एक ऐसा रसूल भेजियो जो ये काम करेगा। पहला ही काम क्या? यतलू अलैहिम आयातिका, तिलावत आयात। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह मारिफुल कुरान में फरमाते हैं कि तिलावत आयात का मतलब कुरान के अल्फाज की तालीम देना, कुरान के अल्फाज की। हालांकि सहाबा किराम जो हैं वो तो पैदाइशी अरब थे, और जिस दौर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत हुई थी, आप नबी बना करके भेजे गए थे, वो तो फसाहत व बलागत का दौर दौरा था। लेकिन इसके बावजूद कुरान एक ऐसी किताब है कि जब तक के नबी वो सिखलाएगा नहीं उसका पढ़ना, वहाँ तक आदमी पढ़ सकेगा नहीं। देखो इसीलिए हज़रत थानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि भाई सूरह बकरा अगर आप पहला ही पारा शुरू जहाँ होता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी, कोई अरबी का कितना ही माहिर हो आप उसके सामने खोल कर रख रख दें ये पहली आयत की तरफ इशारा अलिफ लाम मीम, भाई पढ़ो इसको। तो अगर इसको बाकायदा उस्ताद ने पढ़ना ना सिखलाया हो तो वो पढ़ नहीं सकेगा, वो तो अलम पढ़ेगा, जैसे अलम तरह कई फवाल अब कभी असाबिल फिल्म में पढ़ता है। यहाँ ये हरूफ मिलाकर नहीं पढ़ने के हैं, अलग अलग पढ़ने के हैं। ये तो जब अल्लाह के नबी बतलाएंगे, और अल्लाह के नबी से जिन्होंने सीखा एक सिलसिला उनके ज़माने से जो चला आज तक, वो इसी तरह जो है सीखे हुए लोग ही उसको सिखला सकते हैं। तो गया कुरान एक ऐसी किताब है कि उसको पढ़ना भी सिखलाना पड़ेगा, पढ़ाना सिखलाना पड़ेगा। तो बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला काम कुरान के अल्फाज की तालीम। हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमारे यहाँ मदारिस में मकातिब में कुरान नाजरा का शोबा है, नाजरा कुरान का, हिफ्ज़ का शोबा है, तजवीद व क़िरात का शोबा है। ये तीन शोबे जो हैं वो इसी यतलू अलैहिम आयातिक का मिस्दाक हैं। ये जो लोग इन शोबों को संभाले हुए हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मकसद बासत को पूरा कर रहे हैं। और आगे वही वाले मुहम्मद किताब और हिकमा, किताब और सुन्नत का इल्म। हिकमत से मुराद सुन्नत, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने हिकमत की तशरीह तफसीर सुन्नत ही से की है। तो ये जो शरीयत के अहकाम हैं वो बतलाना, और आगे फिर वही ज़क़ीम तज़किया, उनको गंदे अखलाक से, गंदे अकायद से, गंदे आदात व अतवार से पाक करना। तो हमें पाक तो वो करेगा जो खुद भी अपने आप को इन चीज़ों से पाक कर चुका हो। तज़किया के लिए खुद ही मुज़क्का होना ज़रूरी है, जो मुज़क्का नहीं होगा वो मुज़क्की कैसे बनेगा। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मकासिद, उसके अलावा और उदू इला सबील रब्बे कबिल हिकमत वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, कि अपने रब के पर रास्ते की तरफ बुलाओ लोगों को हिकमत से और अच्छी नसीहत के ज़रिए से, और उनमें वादलो वो होंगे कि जब आप उनको दावत देंगे तो आपके मुकाबले में दलीलें करेंगे, तो आप उनसे मुजादला पे तरीक़े अहसन कीजिए। ये जो इल्मी एतबार से मुनाजरा किया जाता है ये भी अहले इल्म का काम है, जो गैर अहले इल्म है वो नहीं कर सकता। तो यह नबियों के ही को यह हुक्म दिया गया था, और एक और जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राइज़ को बतलाया गया, या अमरुहुम बिल मारूफ़ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुम अत्तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिम अल खबाइस व यदउ अनहुम इसरहुम व अलग़लाल अल्लती कानत अलैहिम, कि नबी उनको भली बात का हुक्म करते हैं, माशरे के अंदर भलाई को आम करना। ये तो वैसे हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरून अबिल मारूफ़ व तनहाउन अल मुनकर। हर ईमान वाला जो इससे वाकिफ़ हो, जितनी जिस खैर से वाकिफ़ हो उस खैर को आम करना ये उसकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ख़ास इस मकसद के लिए भेजा था, तो हज़रात उलमा जो अम्बिया के वारिस हैं उनको चाहिए कि इसका ख़ास एहतमाम करें कि मारूफ यानि भलाइयों को आम करने की मेहनत करें, और वयनहाहुम अनिल मुनकर और बुराइयों से रोकने को भी की भी मेहनत करें, उसकी तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए। जो बुराइयां माशरे के अंदर हैं लोगों को बाकायदा उसकी तरफ मुतवज्जे किया जाए। पहले ज़माने में किसी देहात के अंदर भी कोई आलिम काम कर रहा होता था तो लोगों में जो कमज़ोरियाँ खराबियाँ होती थी, भाई शादी ब्याह के मौके पर जिन रस्म व रिवाज की वो पाबंदी करते थे, इस सिलसिले में बड़ी मोहब्बत से उनको समझा कर इन रसूम व रिवाज से दूर रखने की निकालने की कोशिश करते थे। इसी तरह और भी बुराइयाँ, तो बहरहाल बुराइयों से रोकते हैं। वह युहिल्लु लहुम अत्तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और पाकीज़ा चीज़ों को के हलाल होने को बतलाते हैं और गंदा चीज़ों की हुरमत को बतलाते हैं। हलाल और हराम के मसाइल का बतलाना इस दौर में इसकी तरफ भी ख़ास तवज्जो करने की ज़रूरत है। ये नई नई चीज़ें जो ईजाद होती हैं उनके अहकाम के सिलसिले में जो है अवाम बहुत सी मरतबा जो वो कश्मकश का शिकार होते हैं और उनको पता नहीं चलता, और वो लोग नावाकिफियत की वजह से, लाइल्मी की वजह से वो हराम चीज़ों को इस्तेमाल कर लेते हैं, या बहुत सी मरतबा लोगों में उसका रिवाज चल पड़ता है। अहले इल्म को चाहिए कि खुद अगर मुहक्किक नहीं है तो जो अहले तहकीक अहले इल्म हैं उनसे रुजू करके इन चीज़ों का हुक्म मालूम करके लोगों को बतलाएं, और अगर लोग बुराई उस गलत चीज़ में मुबतला हो गए हैं तो उससे दूर करने की कोशिश करें। तो ये हलाल और हराम के अहकाम का बयान करना ये भी उलमा की जिम्मेदारी है, और हज़रत अम्बिया का अमल बतलाया गया, उलमा चूँकि वारिस है वो ये करेंगे। और वयदाउनु इसरहुम वला गलाल अल्लती कानत अलैहिम, और जो बेड़ियाँ और पाबंदियाँ उनके ऊपर हैं, क्या बेड़ियाँ पाबंदियाँ, ये जो रस्म रिवाज की वजह से लोग जो है एक घुटन महसूस करते हैं। हर कबीले में या हर कम्युनिटी के अंदर कुछ ऐसी रस्में होती हैं कि उन रस्मों को शरीयत के अहकाम के मुकाबले में लोग तरजीह देते हैं, दीनदार लोग भी उसके सामने जो है सर उठा सकते नहीं हैं। वहाँ बहुत से लोग दीनदारों को भी कहा जाए भाई आप तो मौलाना आलिम हैं, आप तो दाई हैं, आप तो ये हैं, दीनदार आदमी हैं, क्या कहें, मानते नहीं लोग, लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, ये ऐसा आम मिजाज बना हुआ है। ये आर जो है इस आर से अपने आप को निकालना है। बंदा कब खालिस हकीकी मोमिन नहीं बन सकता जब तक कि ला खाफून फिल्लाहि लौमत लाइम, अल्लाह के मामले में किसी भी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह न करें। भाई हमको तो अल्लाह के हुक्म पर अमल करना है, लोग जो कहना हो कहते रहे, हमें उसकी परवाह नहीं। जो आदमी ये सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, हज़रत शाहुल्लाह साहब दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हुज्जतुल्लाह में, जब तक के लोगों के इस तानो तशनी से बेपरवाह नहीं हो जाएगा आदमी, और बेपरवाह होकर अल्लाह के हुक्म को अल्लाह के अहकाम को बजा लाने का मिजाज नहीं बनेगा, वहाँ तक ईमान की गोया हलावत उसको हासिल हो सकती नहीं है। बहुत से लोग दीन पर अमल करने वाले भी यहाँ आकर के वो अपनी कमज़ोरी दिखलाते हैं, तो ज़रूरत इसकी है कि इसका अहतमाम किया जाए। तो बहरहाल कहने का हासिल यह है कि जो आदमी ये खाली मदरसे में पढ़ लिए सनद हासिल कर ली उसकी वजह से हम अपने आप को वारिसुल अंबिया कहें, नहीं, वारिसुल अंबिया ये कोई मनसब और ओहदा नहीं है, ये कोई मुफाखरत और फख्र की चीज़ नहीं है, बल्कि ये तो एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक मसूलियत है। और जो आदमी हज़रत अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकासिद बासत और वज़ाइफ़ नबुव्वत को सामने रख कर सही उसूल के मुताबिक दीन की खिदमत अंजाम देगा वो हकीकी माने में वारिसुल अम्बिया कहलाए जाने का मुस्तहिक है। तो बहरहाल आप हजरात यहाँ इस मुल्क में लगे हुए हैं तो आप अपने आप को खाली इमामत तक या मकतब या मदरसे तक महदूद न रखें, बल्कि आपका अमली दायरा जो है वसी होना चाहिए, लोगों के साथ आपके रवाबित हों और लोगों के हाल से आप वाकिफियत रखते हुए जो जो भी बुराइयाँ माशरे में, सोसाइटी में, समाज के अंदर फैली हुई हैं शरीयत के ख़िलाफ़ जो चीज़ें हैं उनसे वाकिफियत हासिल करके उनको दूर करने की और लोगों को इस सिलसिले में जो है सही रहनुमाई की करने की गोया आपको कोशिश करनी चाहिए। ये जितना भी आप इसमें आप लगेंगे इतना ही अल्लाह तबारक तआला की रज़ा और खुशनुदी हासिल होगी। और इस काम में अगर कभी कोई तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े तो उसके लिए अपने आप को तैयार रखें। अल्लाह तबारक तआला हम सबको इसकी तौफीक और सआदत अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।